भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की।
हम लोग आज स्कंद पांच का भागवतम का 25वें अध्याय का 7वें और 8वें श्लोक पे हैं। 7वें श्लोक में कोई तात्पर्य नहीं है, अतः मैं उसका अनुवाद पढ़ूंगा और फिर 8वें को हम लोग दोहराएंगे। 7वें श्लोक का अर्थ सुखदेव गोस्वामी बोले, आगे बोले, देवता असुर उरग सर्पदेव सिद्ध गंधर्व विद्याधर तथा अनेक सिद्ध संत जन भगवान की निरंतर प्रार्थना करते हैं, करते रहते हैं। मत के कारण भगवान विह्वल प्रतीत होते हैं और उनके नेत्र पूर्ण पुष्पित फलों की भांति इधर उधर गति करते हैं। वे अपने मुख से निकली वाणी मधुर वाणी से अपने पार्षदों देवताओं के प्रमुखों को प्रसन्न करते हैं। नीलांबर और कान में एक कुंडल धारण किए हुए वे अपनी पीठ पर हल को अपने दो सुगण हाथों से पकड़े हुए हैं। वे इंद्र के समान श्वेत लगते हैं। वे अपनी कटी में स्वर्णिम मेखला और गले में चिर नवीन तुलसी दलों की वैजंती माला धारण किए हैं। तुलसी दलों की मधु जैसी गंध से आकर्षित होकर मधुमक्खियां माला के चारों ओर मंडराती रहती हैं, जिससे माला और भी सुंदर लगने लगती है। इस प्रकार भगवान दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। श्लोक 8। या जो एषा यही एवं इस प्रकार अनुश्रुतः प्रमाणिक गुरु से सुना जाकर ध्यायमाना ध्यान किया गया मुमुक्षुणा बद्ध जीवन के मुक्ति के आकांक्षी मनुष्यों का अनादि अनंत काल काल कर्म वासना कर्मों की कामना द्वारा ग्रथितम दृढ़ता से बंधा हुआ अविद्यामयम माया शक्ति से युक्त हृदय ग्रंथिम हृदय के भीतर की गांठ सत्व रज तममयम प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त अंतः हृदयम हृदय के भीतर गतः स्थितः आशु शीघ्र ही निर्भिनते काटता है
तस्य संकर्षण का अनुभावान यश भगवान अत्यंत शक्तिमान स्वयंभुवः ब्रह्मा के पुत्र नारदः नारद मुनि सह साथ तंबूरा तार युक्त वाद्य यंत्र तंबूरा के सभायां सभा में ब्रह्मणः ब्रह्मा जी का संश्लोकयामास श्लोकों में वर्णित अनुवाद एवं तात्पर्य बाई शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की जय। यदि भौतिक जीवन से मुक्ति पाने के इच्छुक पुरुष शिष्य परंपरा से प्राप्त गुरु के मुख से अनंत देव के यश को सुनते हैं और यदि वे संकर्षण का निरंतर ध्यान धरते हैं तो भगवान उनके अंतःकरण में प्रवेश करते हुए प्रकृति के तीनों गुणों के सारे कलमशः को दूर कर देते हैं और हृदय की उस कठोर ग्रंथि को काट देते हैं जो सकाम कर्मों के द्वारा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की अभिलाषा के कारण अनंत काल से दृढ़ता से बंधी हुई है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि अपने पिता की सभा में अनंत देव के यश का सदैव गान करते रहते हैं। वहां वे अपने द्वारा रचित शुभ श्लोकों का गान अपने तंबूरे के साथ करते हैं। तात्पर्य, भगवान अनंत देव के इन वर्णनों में से कोई भी काल्पनिक नहीं है। वे सभी दिव्य आनंद एवं ज्ञान से पूर्ण हैं। किंतु जब तक कोई इन्हें परंपरागत प्रमाणिक गुरु से प्रत्यक्ष नहीं सुनता उन्हें नहीं समझ पाता। इस ज्ञान को ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया और महामुनि नारद ने अपने संगी तंबूरे सहित इस ज्ञान को विश्व भर में वितरित करते हैं। कभी कभी भगवान को श्री भगवान को उत्तम श्लोक कहकर वर्णित किया जाता है। नारद मुनि भगवान अनंत की प्रशंसा में अनेक श्लोक बताते हैं। इसीलिए इस श्लोक में संश्लोकयामास चुने हुए श्लोकों से शब्द का व्यवहार हुआ है। गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव ब्रह्मा जी से चली आने वाली शिष्य परंपरा से संबंध है। ब्रह्मा जी नारद के गुरुदेव हैं, नारद व्यास देव के गुरु हैं तथा व्यास देव ने श्रीमद् भागवत की रचना वेदांत सूत्र की टीका के रूप में की। फलतः गौड़ीय संप्रदाय के समस्त भक्तगण श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान अनंत की क्रियाओं को प्रमाणिक मानते हैं और इस प्रकार उन्हें भगवान के धाम में वापस जाने का लाभ प्राप्त होता है। बद्ध जीव के हृदय का कलमश कूड़े के ढेर के समान है जो तीन प्रकार के गुणों द्वारा विशेष रूप से रजो तथा तमो गुणों के द्वारा उत्पन्न होता है। यह कलमश कामेच्छा एवं धन की लालसा के रूप में प्रकट होता है। जैसा कि यहां पुष्टि की गई है, जब तक मनुष्य को परंपरागत दिव्य ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता तब तक उसके इस कलमश से शुद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरो श्रीयुत पादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आज हम लोग भागवतम के पांचवें स्कंद के 25वें अध्याय के 7 और 8 श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। भागवतम के पांचवें स्कंद की शुरुआत महाराज प्रियाव्रत के से हुई, उनकी कथा से हुई। उसके बाद में अग्निधरा जी का वर्णन हुआ, उसके बाद ऋषभदेव का, और ऋषभदेव के बाद में और जो कथाएं थी वो उसमें आगे बढ़ी, जैसे कि भरत महाराज की और जड़ भरत और महाराज राहुगणा, उनका संवाद हुआ। तो चलते चलते बात फिर ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में सूर्य, ब्रह्मांड गेशना जम्बूदीपा और फॉरेस्ट ऑफ मेटल एंजॉयमेंट, मतलब ये दुनिया है, ये संसार की रचना है, लोग इसमें आनंद की प्राप्ति, इंद्रियों की तृप्ति करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये जंगल है। जंगल में एक तरीके से इसकी तुलना जंगल से इसलिए की गई कि यहाँ पे कोई भी सुख से यहाँ रह नहीं सकता। जैसे जंगल में जानवर होते हैं, अगर हिरण पानी पीता है तो दोनों तरफ गर्दन घुमाता रहता है ऐसे करके, तब वो पानी पीता है, क्योंकि डर है शेर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग भी इस संसार में डरे हुए हैं, और मृत्यु का डर सबसे बड़ा है, और जो भक्त लोग हैं उनको ये डर की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा भगवान के चरणों में शरण लिए हुए होते हैं और हमेशा उनका ध्यान भगवान के चरणों में होता है। यहाँ पे जो 7वें श्लोक के अनुवाद में ये बात आई कि सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, देवता असुर सर्पदेव सिद्ध गंधर्व विद्याधर तथा अनेक सिद्ध जन संत जन भगवान की निरंतर, कौन से भगवान की? अनंत देव, क्योंकि ये भगवान अनंत की महिमा का अध्याय है। तो ये सब लोग भगवान अनंत, अनंत शेषा, ये भगवान के बहुत, भगवान का एक्सपेंशन है, भगवान का, और आगे जो भगवान के अवतार हैं उनमें से एक है, भगवान के ही एक्सपेंशन है। तो अनंत शेष बलराम लक्ष्मण नित्यानंद सब एक ही है, तो यहाँ पे समझने की बात है। और ये भी इसमें बात आई कि भगवान बलराम वो वारुणी जो एक हनी और ये सब चीजों से उसको उसका स्वादन करके, तो वो हमेशा उनकी आंखें ऐसी लगती हैं जैसे मद में हैं, तो मद के कारण भगवान विह्वल प्रतीत होते हैं, भगवान थोड़ा सा एक अलग ही उनका छवि है। और उनके नीले वस्त्र हैं, उनके कान, एक कान में कुंडल धारण किए हुए हैं और उनके कंधे पर हल है। ये सब अनंत देव का, भगवान बलराम का वर्णन है, वैजयंती माला है। तो अगले श्लोक में यदि मन भौतिक जीवन से मुक्ति पाने के इच्छुक पुरुष शिष्य परंपरा से, तो यहाँ पे परंपरा की बात आई। परंपरा में यही है कि गुरु और शिष्य की परंपरा जरूरी है। गौड़िया, हम लोग ब्रह्मा गौड़िया मध्वा संप्रदाय से हैं। भगवान ब्रह्मा को सबसे पहले भगवान तेने हृदय ब्रह्मा आदि कवि, आदि कवि मतलब ब्रह्मा जी सबसे पहले कवि हैं, सबसे पहले लर्नड ज्ञानवान पुरुष हैं, सबसे पहले वो ऐसे जीव हैं जिन्हें भगवान ने ज्ञान दिया, आदि कवि। तो तेने हृदय ब्रह्म आदि कवि, तो आदि कवि है, तो उनको ब्रह्मा ने भगवान ने ज्ञान दिया। उसके बाद नारद मुनि को उन्होंने बताया जो उनके पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं। तो एवं परंपरा प्राप्ति एवं राज ऋषियों विदु, सहकाल लेने में था। इस तरह परंपरा में ये ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिनको परंपरा में ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती उनका ज्ञान संप्रदाय विहीना, जो संप्रदाय के विहीन है, संप्रदाय के बगैर, जैसे आजकल बहुत सारे गुरु हैं उनका कोई गुरु नहीं है और उनके चेले बैठे हुए हैं, कथा चलती रहती है, तो वो जब तक संप्रदाय से आदमी जुड़ा हुआ नहीं है, संप्रदाय से तक परंपरा में ज्ञान की प्राप्ति नहीं ली है, तब तक वो ज्ञान सफल नहीं होता। संप्रदाय विहीना मंत्र निष्फला, जो मंत्र का प्रभाव है वो नहीं होता। तो संप्रदाय में शिष्य की परंपरा का, अब यहां गुरु की महिमा का भी वर्णन है कि जो आदि गुरु है अनंत शेष जो ब्रह्म बलराम है वो गुरु है और बलराम सबसे पहले गुरु है और गुरु की महिमा एक अपरंपार है, भगवान से भी बड़े ज्यादा गुरु की महिमा है। इसलिए हम लोग अगर भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भगवान बलराम के बिना यह संभव नहीं है। और इसके बाद इसमें तात्पर्य में बात आई कि किस तरीके से ग्रंथि, कठोर ग्रंथि, ये ग्रंथि क्या है जो हृदय में, भागवतम में कैंटो वन में स्कंदे पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में सूत गोस्वामी की सूत शिक्षा है, उसमें विद्यते हृदय ग्रंथिस चित्यन्ते सर्व संशय क्षीयसे चात्म कर्मानं दष्ट एवात्मनीश्वरे। और इसी पूरे सूत शिक्षा को शिला प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के सातवें अध्याय के पहले श्लोक में अशंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाच्छसि तत्शृणु अशंशयम, तो अशंशयम को प्रभुपाद जी ने जब वहाँ सातवें अध्याय के पहले श्लोक में देखा तो उन्होंने फिर ये सूत शिक्षा को पूरा का पूरा वहाँ पे उद्धृत किया और श्लोक के तात्पर्य में सूत शिक्षा का वर्णन सातवें अध्याय के पहले श्लोक में आया और वहाँ अशंशय, तो ये जो हृदय में ग्रंथि है, ये जो बंधी हुई है गांठ, और ये गांठ काहे की, ये गांठ जो है हृदय में अनंत काल से दृढ़ता से बंधी हुई है। तो ये अनंत काल से कैसे, अनादि कर्म फले जीव कृष्ण भूली गेला अतः वह कृष्ण वेद पुराण करेला। तो ये जो वेद पुराण की रचना भगवान ने की, क्योंकि अनादि कर्म फल, पता नहीं कौन से कर्म से कहां से हम लोग बंधे हुए हैं। आज हमारे हृदय में जो भौतिक तत्वों को और इस दुनिया को इसके द्वारा आनंद प्राप्ति और सुख प्राप्ति के जो ये कारण है, इसके पीछे है कि हमारे पुराने हजारों जन्मों के कर्मों के फल जो है वो हमारे हमारे हृदय में, जैसे चेतो दर्पण मार्जनम, तो चित्त रूपी हृदय के ऊपर, दर्पण रूपी हृदय के ऊपर जो जन्म जन्मांतर के कर्मों के फल की धूल हमारे हृदय रूपी दर्पण के ऊपर, चेतो दर्पण, दर्पण के ऊपर जो धूल बैठ गई है वो धूल अवांछित है, वो हमें ऐसे कर्मों की तरफ लेके जाती है जो हमें फिर से कर्म बंधन में बांध, कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता एक ही है, कलि संतान उपनिषद में बताया, इति षोडश कम नाम कलि कलमश नाशनम न परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। इति ये जो है षोडशकम, 16 शब्दों से बना हुआ मंत्र, नाम मंत्र, कलि कलमश नाशनम, कलियुग के समस्त पापों का नाश करने में सक्षम है, न था परतर उपाय, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को देखने के बाद व्यास देव ने 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, उसमें कलि संतान उपनिषद 108 में से एक, और उस कलि संतान उपनिषद में कहा कि कलयुग में ये संभव ही नहीं है इस मंत्र के, ये जो मंत्र है 16 शब्दों का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये 16 शब्दों का बना हुआ मंत्र अमृत की तरह है। इस अमृत का पान करके हम लोग इस कलयुग के समस्त पापों से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि कर्माणि निर्दय थी किंतु च भक्ति भाजान। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा कि इंद्र से लेकर इंद्र गोपा, स्वर्ग के राजा इंद्र और गोबर में रहने वाले कीड़े का नाम इंद्र गोपा, दोनों की तुलना की कि दोनों को कर्माणु रूपम अपी, कर्मों के हिसाब से जाना पड़ेगा। जो भी कुछ हमारे जीवन में होगा वो पिछले कर्म से बंधा हुआ है। किंतु च भक्ति भाजान, लेकिन जो भक्ति के भजन में लगे हुए हैं, जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये नित्य जप माला, नित्य भगवान कृष्ण के हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, उनको उनके कर्मों को कर्माणि निर्दहति, उनको इस किंतु च भक्ति भाजान, जो भक्ति भजन हम करते हैं, ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, इसके अंदर हमारे हजारों हजारों करोड़ों जन्मों के पाप का भस्म हो जाते हैं, और तब हम शुद्ध होके भगवान का नाम ले पाते हैं। तो कोई रास्ता नहीं है कर्म के फल से बचने का, एकमात्र हरे कृष्ण मंत्र का सहारा है। और कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, और स्पेशली नित्यानंद महाजन, ये जो अनंत शेष हैं जिनकी महिमा का ये वर्णन है आज, इन अनंत शेष की महिमा अनंत है, और ये भगवान के जैसे गुरु भगवान की सेवा में सबको लगाते हैं, अपने शिष्यों को सेवा में लगाते हैं, ऐसे ही अनंत शेष भी हम सबको भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। उनकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है। गुरु की महिमा, गुरु शिष्य की परंपरा, जैसे कि रामचरितमानस के कई वर्जन हैं, कई कई लोगों ने अलग अलग समय पे, लेकिन सभी को, हालांकि वाल्मीकि रामायण सबसे ज़्यादा मान्य है वैष्णवों के द्वारा, लेकिन रामायण में रामचरितमानस में कहीं ये वर्णन है कि काग भुसुंडी जो हैं वो कौवे के रूप में हैं, उन्होंने सारी ये भगवान राम की लीलाएं गरुड़ जी को बताई, और गरुड़ जी उन तक कैसे पहुँचे। गरुड़ जी काग भुसुंडी जी के पास पहुँचे क्योंकि उनको, गरुड़ जी को मोह हो गया, ये एक भ्रम हो गया कि जो ये तीनों लोकों के स्वामी हैं, ये जो राम और लक्ष्मण हैं, सारी दुनिया से सारे ऋषि मुनि जिनका हर वक्त ध्यान करते हैं, आज वो मेघनाथ के नागपाश पे बंधे पड़े हुए हैं और मैं उनके नागपाश को काट रहा हूं, तो ये क्या है। तीनों लोगों के स्वामी मूर्छित और मैं नागपाश काट के उन्हें छुड़ा रहा हूं। तो जब गरुड़ जी को भ्रम हुआ, अब नारद मुनि का तो यही बिजनेस है, और तुरंत वहां पहुंचे, कहने लगे आपको भ्रम हो गया है प्रभु, आप ऐसा कीजिए, वहां जंगल में काग भुसुंडी जी हैं, वो उनके उनके दर्शन से, उनके प्रवचन से आपका भ्रम दूर होगा। तो जब गरुड़ जी काग भुसुंडी जी के वन में प्रवेश करते, तो मीलों मीलों तक राम 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 की जो है वो महिमा चल रही थी, और उनके प्रवेश करने इस एरिया में प्रवेश करते ही उनके मन से सारा भ्रम दूर हो गया, और जाके सीधे काग भुसुंडी के चरणों में माता टेके बोले कि महाराज, मैं मुझे नारद जी ने भेजा है और मुझे ये भ्रम इस तरह से हो गया था कि मैं तीनों लोगों के स्वामी के बंधन काट रहा हूँ, ये क्या है। लेकिन मुझे मालूम है कि उनकी ये लीला है, उनका ये चरित्र है, वो इस तरह से करते हैं, भक्तों को सेवा का मौका देते हैं, भक्तों का गुणगान, भक्तों को उनका भक्तों का चरित्र लोगों के सामने लाने के लिए कई बार भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, मुझे समझ में आ चुका, क्योंकि आपके यहाँ प्रभाव से, आपके जप और तप के प्रभाव से मीलों मीलों तक सारा जंगल राममय हो गया है, और मेरे घुसते ही, मेरे इस वन में प्रवेश करते ही मेरे मन से सारे संशय दूर हो गए। लेकिन एक मेरा प्रश्न है आपसे, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, और वो प्रश्न ये है कि आप ये कौवे के शरीर में, ये क्या मतलब, शरीर भी आपने क्या कहोगेगा और आप इसी में। तो उन्होंने कहा, भाई अगर तुम पूछ रहे हो तो फिर मुझे बताना ही पड़ेगा, मुझे कौवे के शरीर से मोह इसलिए है कि मैंने इसी शरीर में राम और सीता और लक्ष्मण और ये अवधेश के चारों बालक जो हैं, इनकी लीलाएं अयोध्या में देखी हैं, क्योंकि मुझे गुरु ने मेरे बताया था कि जब मैं कौवे की योनि में पहुंचूंगा तो मुझे वो चारों बालक के जब दर्शन होंगे और उनकी लीलाओं को मैं देखूंगा तो मुझे जो उससे मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मैं भूल नहीं सकता और कौवे के शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। तब उन्होंने बताया कि मैं बहुत जन्मों पहले भगवान शिव का भक्त था और ऐसा भक्त था कि 24 घंटे शिव जी के मंदिर में बैठ के और मैं बेलपत्र चढ़ाना, दूध चढ़ाना, चंदन ये सब और तरह तरह से शिव जी की स्तुति करता था। इसका मुझे अभिमान हो गया। तो एक दिन मेरे गुरु महाराज मंदिर में जब आए तो मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया और यही अपमान गुरु का सही नहीं सके महेश। गुरु का ये अपमान गुरु ने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि गुरु तो गुरु की महिमा अनंत है, अनंत शेष। गुरु कभी भी किसी शिष्य का कोई अपराध स्वीकार नहीं करते, हमेशा उसको नजरअंदाज करते हैं, सोचते हैं कि एक दिन ये शिष्य उभर के समझ के आगे आएगा और अपनी कृपा ही देते हैं। तो उन्होंने उसका ऑफेंस नहीं लिया मगर शिव जी भगवान ने उसका ऑफेंस लिया और कहा रौरव नरक पर ही तो जाएगी, तो भयंकर नरक में जाके तो सड़ेगा। अब ये कहते ही उन्होंने गाग भुजुंडी जी बता रहे कि मैं तो ऐसा हो गया जैसे कि पत्थर का, इतना भयंकर श्राप मुझे सुनने को मिला, मेरी आंखें और मेरा शरीर सब जैसे जड़वत हो गया। वो बोले हाहाकार कीन गुरु, तब शिव कीन प्रणाम। तो गुरु ने हाहाकार की कि क्या हुआ ये मेरे शिष्य के लिए, क्या हो गया, ये कैसे, ये क्यों श्राप मिला, मैं क्या करूं। तो गुरु को देखो, जिन शिव जी की वो स्तुति कर रहा था उन्होंने गुरु का अपमान बर्दाश्त नहीं किया, उन्होंने श्राप दे दिया। लेकिन जिन गुरु के कारण गुरु को बहुत दुख पहुंचा, तब उन्होंने भगवान शिव की नवदा भक्ति की और नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। तो ये नौ तरीके से भगवान शिव की गुरु ने स्तुति की। भगवान शिव गुरु के प्रति प्रसन्न हुए, बोले रे सठ मूर्ख, तूने जो अपराध किया वह अक्षम्य है, गुरु के प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए, जो तूने अपराध किया वह अक्षम्य है, लेकिन तेरे गुरु की तेरे पे बड़ी कृपा है, अब इस कृपा के कारण मैं ये कहता हूं कि तू जन्म जन्मांतर तक कई योनियों में भटकेगा, जन्म लेगा, लेकिन तुझे कौवे की योनि में भगवान स्वयं अपने दर्शन। तो जब मुझे ये भगवान राम के दर्शन हुए तो फिर मुझे मेरा जन्म सफल हुआ। तो गुरु एक ऐसे गुरु तत्व गुरु एलिमेंट ऐसा भी नहीं, क्योंकि गुरु भी कई तरीके के होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, वर्तमान प्रदीक्षा गुरु। तो ये जो गुरु हैं, जो हमारे गॉड ब्रदर्स हैं, गॉड सिस्टर्स हैं, वो हमारे शिक्षा गुरु हैं, जो हमें भगवान तक लाए, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु तक लाए, वो सब शिक्षा गुरु हैं। शिक्षा गुरु का कई बार बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे जीवन में, जो हमें भगवान तक, हमारे गुरु तक लाए। शिक्षा गुरु का बहुत महत्व और बहुत बात तक है। कई बार गुरु से इतना ज्यादा हम लोग नहीं सानिध्य पा पाते हैं, तो शिक्षा गुरुओं से हमें बहुत कृपा मिलती है, उनसे बहुत सलाह मिलती है, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ये ठीक नहीं है, ये चीज गलत है। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए, जो हमारे साथ में जो भक्त लोग हैं वो हमारे शिक्षा गुरु की तरह हैं। दत्तात्रेय के 24 गुरु, उन्होंने 24 गुरुओं से शिक्षा ली, काग स्नान, बग ध्यान और वो उन्होंने कपोत, अजगर, ये सब उनके 24 गुरु हैं दत्तात्रेय के, जो उन्होंने सबसे शिक्षा ली। शिक्षा मिले वो, जहां से भी शिक्षा मिले वो गुरु हैं। और अब गुरु की जो यहाँ पे और महिमा आई, जैसे कि बलराम जी, वही नित्यानंद हैं। और जब बलराम जी जिस असेंबली में हु गए, हालांकि उन्होंने ये सब अपनी गदा वगैरह सब छोड़ दी थी और उन्होंने कहा कि अब मैं युद्ध में कोई भाग नहीं लूंगा, तो लेकिन वो जब पहुंचे तो वहाँ व्यास आसन पे रोमहर्षा जो है वो भागवत की कथा कर रहे थे और उन्होंने उठ के बलराम जी का अभिवादन नहीं किया। इससे बलराम जी को क्रोध आया और उन्होंने हालांकि कोई वेपन उठाने के लिए नहीं बावली हुई थी, उन्होंने एक तिनके से उठा के उनको उनका अंत कर दिया। तो कितना उनका स्थान है। एक बार मैं खुद ह्यूस्टन में वहाँ के इस्कॉन के मंदिर में प्रवचन कर रहा था व्यास आसन पे, और तभी वहाँ हनुमत प्रेषक स्वामी महाराज का आगमन हुआ। तो मुझे एकदम उठ के व्यास आसन से उनको प्रणाम किया। तो ये हमारा कस्टम है, जब बड़े संत और इस तरह से या कोई आए तो हम लोग उठ के उनका अभिवादन करें, उनको नमस्कार करें। तो वही बलराम नित्यानंद के रूप में देखो, जब वो नित्यानंद के रूप में वहाँ जगाई मदाई और हरी राम कीर्तन में निकले हुए हैं, तो वहाँ पे जगाई मदाई उनको पत्थर तक मार देते। और वो उस वक्त जब चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन चक्र को कॉल करते तो कहते नहीं, इनको माफ कर दो। तो कितना निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला जय छायाए जगत झुराए। तो नित्यानंद प्रभु की महिमा अनंत है, अनंत शेष वही है, वही बलराम है। सची सुता बलराम हुई लो निताय। तो बलराम जो है वो नित्यानंद के रूप में कितने 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 दयालु कि उनको पत्थर भी मार दिया, कुछ मार दिया फेंक के, तब उनका खून निकला। और चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र को कॉल कर लिया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने ये कहा कि नहीं 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 नहीं, आप अब आप इस कलयुग में इस समय में किसे किसे मार, सब तरफ पापी पाप है, गंदगी गंदगी है, लोग पाप में लिप्त है, आप अपनी कृपा से। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब उन दोनों के पाप अपने शरीर गुस्सण के लिए ब्लैक हो गए, तो ये नित्यानंद प्रभु की महिमा है अनंत शेष के रूप में। उन्होंने किस तरीके से कैसे, वो एक ऐसे गुरु हैं जिनकी कृपा का कोई अंत नहीं है। और ये न परम करुणा बहु द्विजना निताय गौरचंद्र सर्व अवतार सर्व शिरोमणि केवल आनंद कंद। ये जो नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु है, ये परम करुणा बहु द्विजना, ये दो लोग जो हैं बहुत, इनकी कृपा का कोई, चैतन्य रे दया रे करो विचार, विचार करी बेचित पावे चमत्कार। ये चैतन्य महाप्रभु की दया अनंत है, ऐसे समझ लो। जैसे एक बार गणपति महाराज अमेरिका में प्रवचन कर रहे थे तो बोले, जैसे चैतन्य महाप्रभु इधर तो आप खड़े हैं और इधर आपके सारे पापों का एक पर्सोनिफाइड आप खड़े हुए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु अपनी गर्दन को इधर घुमाएंगे भी नहीं, इधर ही देखेंगे, इधर की तरफ मुंह नहीं करेंगे, कि आपके पापों को देखेंगे ही नहीं, क्या आपकी बैकग्राउंड है, क्या आप किस योनि में कहां से कितने पापों को, अनगिनत जन्मों से आप पाप करते चले आ रहे हैं, हम लोग पाप करते चले आ रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरदशे नमः। महावदान्याय मोस्ट मैग्निफिसेंट, उनकी कृपा का कोई अंत नहीं। तो यहां जो अब हम लोग इस शरीर में, इस मृत्यु लोक में, हमारी एक जो तीन गुण जो यहां पे वर्णन आया कि तीन गुण रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, इन गुणों से प्रभावित रहते हैं। और इन गुणों से प्रभावित होने के कारण हम तरह तरह के कार्मिक, तरह तरह के कर्मों में लिप्त हैं, जिससे हम कर्म के बंधन में फंसते चले जा रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जैसे कि, और हमारा किसी पॉइंट किसी स्थिति में हम लोग भगवान से कंपीट करने लगे, भगवान से हमारा एक मुकाबला सा हो जाता है कि कौन एंजॉयर है, हम के तुम। तो उस मानसिकता से हम ग्रसित होके तरह तरह के पाप करते हैं, तरह तरह के कर्म बंधन में फंसते हैं। तो ये जो जैसे कि एक कथा है कि लोग काम पे जाते हैं, पहले जमाने में लोग नदियों के सहारे बोट में बैठ के दूर दूर भी, मतलब इतना जैसे कि अगर 500-600 किलोमीटर दूर कहीं नदी के सहारे जाके आप व्यापार करने गए तो पता नहीं कब गए हैं, कब लौटेंगे। तो ऐसे ही एक ब्राह्मण थे, वो वैश्य थे, वो व्यापार करने के लिए दूर कहीं गए बता के। तो काफी, और उनकी पत्नी गर्भवती थी और वो जब वहां से उधर उनका जो बच्चा था वो तो व्यापार में वहां लगे रहे, धन कमाने में लगे रहे, और जो उनकी पत्नी थी उसको बच्चा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा होके उसने भी व्यापार शुरू किया, तो वो भी व्यापार करने उसी देश में पहुंच गया, उसी शहर में पहुंच गया जहां उसके पिताजी का व्यापार था। और इत्तेफाक की बात है कि उसका भी वही बिजनेस था जो पिताजी का था, और बिजनेस करते करते वो पिताजी से कंपीट करने लगा इतना कि पिताजी के बिजनेस को डाउन कर दिया। तो उन्हीं के गांव का कोई और बुजुर्ग जो उनको सबको जानता था, तो वो भी वहां उसी देश में शहर में पहुंचा, तो उसने देखा, रे तो बाप बेटे में कंपटीशन हो रहा है, तो समझाया कि देखो ये तुम्हारे पिताजी हैं, इनसे कंपटीशन, तुम्हारे पिताजी हैं मेरे, मैं तो ये क्या बड़ी मूर्खता कर रहा था, कितना बड़ा पाप कर रहा था कि इनसे ही मैं कंपटीशन कर रहा हूं बिजनेस में। और पिताजी के चरण छुए, गले लगा और फिर कंपटीशन को छोड़ दिया। ऐसे ही हमें गुरु जो है वो ये बता देंगे, नहीं तुम लोग ऐसे कंपटीशन मत करो, भगवान से स्पर्धा मत करो, भगवान बनने का प्रयास मत करो, भगवान की सेवा करने का भाव रखो, क्योंकि वो तुम्हारे पिता हैं। ये जो पिता का भाव, और भगवान कोई ऐसे नहीं कि वो दंड देने के लिए बैठे हुए, जैसे पिता का दंड कितना होगा, कभी कभी हमारे पिताजी हम लोगों को पिटाई करते थे तो बहुत जोर से ऐसे हाथ लाते थे और कमर में ऐसे टच, ऐसे कमर में मारते थे कि मारेंगे सिंबॉलिक और चोट लगेगी नहीं, लेकिन पिटाई भी कर दी। तो ऐसे भगवान ऐसी ऐसे वो हम लोग करते हैं, टच करते हैं, हम लोग हाँ हाँ हाँ, हम लोग बहुत शोर मचाते हैं कि भगवान तुमने क्या कर दिया क्या कर दिया, लेकिन सच में वो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो पिता हैं, उनकी नेचर, उनकी स्वभाव है, उस स्वभाव को कैसे छोड़ देंगे, जो उनका लव, जो उनकी जो उनका केयर, जो वो हमें हमें जो वो देना चाहते हैं वो कैसे छोड़ देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये यहाँ पे इसमें जो और भी चीज यहाँ पे आई है कि जैसे कि भगवान बलराम ने द्रविड़ा को जो कि और जो भौमासुरा जो कि बाणासुर के साथ में रह के गलत हरकतों में आ गया था, तो इनको भी भगवान बलराम ने इनको मारा। तो भगवान बलराम जो है वो गुरु हैं, और हमारे जो अंदर इस तरह की मल चीजें हैं जो प्योर नहीं है, जो शुद्ध नहीं है, ऐसे विचार, तो गुरु अपनी कृपा से, जैसे कि गुरु की साथ में गुरु को जब भगवान की गुरु पूजा, गुरु जी भगवान की जब सेवा करते हैं पूजा करते हैं तो उनके शिष्य पास में रहते हैं, वो गुरु को फूल देना, गुरु को जल, और गुरु जी को ये चाहिए तौलिया चाहिए भगवान के चंदन लगाने, उसी पे तुलसी के दल देते हैं, तो ये गुरु सेवा करते हैं और शिष्य लोग उनकी सहायता करते हैं, उनके पीछे खड़े रहते हैं, और कोई उनके लिए भागवतम के प्रवचन पढ़ता है गुरु के, तो गुरु इस तरीके से अपने सारे शिष्यों को सेवा में जोड़ लेते हैं, सेवा में ऐसे जोड़ लेते हैं जैसे कि उनके अंदर भी वही गुण आ जाए। और ये जो साधु संत हैं इनके साथ में जरा भी, जैसे कि एक ये साधु संघ जो ये हमारा इस्कॉन का जो एसोसिएशन है कृष्ण भावनामत संघ है, इस संघ की महिमा यही है कि हम लोग एक दूसरे के साथ में मच्छिता मत गता प्राणा बोधयंती परस्पर, हम एक दूसरे को बताते हैं, एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं, ऐसे नहीं करना, ये चीज गलत है, इससे गलत प्रभाव होगा, तो हम लोग अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो ये जो भक्तों का संघ है इसकी अलग ही महिमा, जैसे कि एक बार एक राजा था, तो राजा ने ये घोषणा की कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे करूंगा जो बहुत ज्ञानी समझदार हो, और उन्हें तमाम घोषणा करवा दी कि जितने भी साधु संत ज्ञानी पुरुष हैं वो सब लोग आए और वहां पे जो भी मेरी पुत्री से शादी करेगा सारा राज्य अंत में उसी को मिलेगा। अब वहां बड़े बड़े ज्ञानी व्यानी लोगों की लाइन लगी, सब लोग आके लाइनों में बैठे, तो चोर भी वहीं कहीं था, तो उसने कहा क्या बुराई है, जाके बैठ जाते हैं पीछे की रो में, क्या पता क्या चीज निकल रहा है बाद में, तो चोर भी जाके बैठ गया। और सबसे पहली रो में महाराज ने कहा कि आप सब लोग ज्ञानी हैं, आपने जीवन को देखा है, मैं ये एकमात्र पुत्री है, इतना बड़ा राज्य है, जिससे इसका विवाह होगा उसे राज्य मिलेगा, तो सबसे पहली रो के लोग खड़े हो गए, महाराज आपने बुलाया तो हम मना नहीं कर सकते थे, हमारा आने का फर्ज था, लेकिन हमने तो जिंदगी को समझ लिया, जीवन में कुछ है नहीं, ये जीवन क्षण भंगुर है, इसके अंदर सुख की कामना करना व्यर्थ है। और ये जो विवाह और ये बच्चे और ये अतः गृह क्षेत्र सुत आप रजनस्य मोहम अहम ममेति, ये सब इस मोह में पड़ के, मोह माया जाल में पड़ के ये जीवन व्यर्थ। और वो पहली रोड के चली। अब महाराज ने दूसरी रोड के ऊपर कहा, महाजनों महाराज लोग आप लोग जो है वो क्या विचार है आप लोग? तो बोले महाराज क्या विचार बताएं, जीवन के अंदर ये शरीर जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनसे सब हम ग्रस्त, हमें मृत्यु को फेस करना है, पेन और वर्ज जन्म का पेन है, दुख है, बुढ़ापे का है, बीमारियों का है, और अंत में मृत्यु को प्राप्त होना है शरीर, तो कितना कम समय हमारे पास है, और इस समय में भगवान का ध्यान और भजन हो जाए तो इससे बड़ी कोई हमारी उपलब्धि नहीं हो सकती। हम इसको जीवन को बिल्कुल भी व्यर्थ जाने नहीं देना चाहते, हम तुरंत अभी इसी वक्त आपको, आपने बुलाया तो आना हमें जरूर पड़ा, लेकिन हम ये चाहते हैं महाराज जब हमें आज्ञा दें। और दूसरी रोगी उठ के बाहर चली। अब तीसरी रोगी तरफ देखा, महाराज ने कहा भाई आप लोग बताइए साहब मेरी पुत्री है। बोले वो तीसरी रोगी, महाराज आपने दो लोगों के सुने, दो पूरे आगे पंक्ति हम लोग भी उसी, वो भी उठ के चले, एंड वो पीछे चोर बचा। अब चोर बचा तो महाराज ने कहा भाई सब लोग उठ के चले गए, अब आप हैं और मेरी पुत्री है और ये सारा राज्य है, तो अब आप कृपया मेरी पुत्री का हाथ ग्रहण करें और उससे विवाह करके राज्य को चलाएं। अब वो खड़ा हुआ बोला कि महाराज अब जबकि मैंने तीनों पंक्तियों में बैठे हुए महाजनों के प्रवचन सुन लिए, अब मैं आपको सत्य से विमुख नहीं कर सकता, सत्य से आपको छिपा नहीं सकता, मैं पेशे से चोर और मैं चोरी करना मेरा धंधा है, मैं आज आपके इस सभा में इसलिए आके बैठ गया कि क्या पता मेरा क्या भाग्य है और क्या मुझे मौका मिल जाए, और आज जब आपने कहा कि ये आपकी पुत्री है और ये पूरा राज्य है और शादी करो और राज्य चलाओ और जिसके लिए मैं आया था ये सब पूरा हो गया, मुझे सब कुछ मिल गया जो मेरा प्लान था, और मैं चोर हूं, मैंने सारी उम्र चोरी की, पैसा लोगों का चुराया, लेकिन इन संतों का प्रवचन सुनने के बाद 5 मिनट में मेरे हृदय में अभी कुछ नहीं बचा, और महाराज आप मुझे भी आ गया। तो वो चोर भी उठ के बाहर जाए, तो ये साधु संघ का प्रभाव कि तीन रो में बैठे हुए संतों ने अपनी वाणी से जो शुद्धता से कहा कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा, यहां भजी लो ना कि इस माया को भजना, इस माया के अंदर माया जाल में फंसना ये हमारे लिए नहीं है, इससे हमें निकलना है। तो वो के साधु संग सर्व शास्त्र को है लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि, साधु संग से सिद्धि। तो गुरु की महिमा, अनंत शेष की महिमा और ये सब, और एक ये के ना दिया गोधु में नित्यानंद महाजन पाटी अच्छे नाम हटे जीवे र कारण, ना दिया गोधु में नित्यानंद महाजन पाटी अच्छे नाम हटे जीवे र कारण, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन। तो ये जो भजन है नादिया गोध्रुम में नित्यानंद महाजन है, नादिया गांव में नित्यानंद महाजन पार्टी अच्छे नाम हटे जीवे का कारण, तो नादिया गोध्रुम दीप में नित्यानंद महाजन है और वो क्या कर रहे हैं, नाम हट, उन्होंने नाम की जो ये वितरण शुरू किया है जीवे का कारण, बस जीव के लिए, कि जीव के हित में। तो ये अनंत शेष है, यही बलराम और यही लक्ष्मण और यही नित्यानंद। प्रभु आज्ञाए भाई मांगिए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो किसकी आज्ञा से आए हैं, वो बता रहे हैं खुद ही कि प्रभु की आज्ञा से, प्रभु की, प्रभु चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से मैं आया हूं और आप लोगों से मांगी यही भिक्षा, आपसे मैं भिक्षा में एक चीज मांगता हूं कि बोलो कृष्ण भगवान कृष्ण का नाम लो, भजो कृष्ण भगवान कृष्ण का नाम भजो, कोरो कृष्ण शिक्षा, और भगवान की जो शिक्षा है उसे अपने जीवन में उतारो, भगवद गीता को पढ़ो। तो ये नाद या गोधर्म दीप में नित्यानंद जो है वो जो अनंत है खुद, वो इतने इतना कृपा मूर्ति सब लोगों को ये दे रहे हैं। अपराध शून्य होए लोहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कहने के अपराध शून्य, तुम सबको मालूम है 10 अपराध हैं, तो 10 अपराध से शून्य, 10 अपराधों को ना करें, ध्यान से इस मंत्र को उच्चारण करें तो अपराध शून्य लोहो कृष्ण नाम, अपराध से शून्य के भगवान कृष्ण का नाम लो। कृष्ण माता है, कृष्ण ही पिता है और कृष्ण ही धन प्राण। ये भाव हमारे हृदय में होना चाहिए और हमें भगवान का जाप, भगवान की जप माला पे ये मंत्र इस तरह से करना चाहिए। ये नित्यानंद जी संदेश पूरे नाद्या गोधर्म दीप में दे रहे हैं। कृष्णेरा संसार गोरो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। जीवे दया, कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी जीव की हत्या हो, और कृष्ण नाम भगवान का नाम लेना है, यही सारे धर्म का सार है। तो नादिया में गोधर्म में नित्यानंद जी ने मार्केट प्लेस में नामहट में होली नेम को जो फॉलन सोल है, जो जो पतित लोग हैं उनको, और हम सब पतित हैं, उनको उद्धार के लिए उन्होंने ये हरि का नाम भगवान का नाम दिया। और श्रद्धावान जन है, आप सब श्रद्धावान लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आप सब श्रद्धावान लोग हैं और मैं चैतन्य महाप्रभु के आदेश के द्वारा आया हूँ और आपसे यही भिक्षा मांगता हूँ कि आप हरे कृष्णा मंत्र की चैंटिंग करें और आप सावधान रहें 10 अपराधों से। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सदमा, तो श्री गुरु के चरणों में सदमा शुद्ध शुद्ध भक्ति, केवल भगति सदमा। श्री गुरु चरण पद्म, पद्म मीन्स लोटस फीट, और उनके चरणों गुरु के चरणों में केवल भक्ति सदमा, सच्ची भक्ति। वंदो मुई सावधान माते, मैं प्रणाम करता हूं गुरु के चरणों में सावधान। सर्वधन नहीं, लोग सर्वधन बोल देते कई बार, ये सावधान है। सावधान मतलब बहुत अलर्ट। हम लोग कई बार गुरु अपराध कर देते हैं, जो लोग गुरु के साथ में सेवा करते हैं जरा सा भी मिस्टेक, जरा सी भी गलती से बहुत जल्दी फॉल डाउन हो जाता है, क्योंकि गुरु की फैमिलियरिटी से हम लोग ऑफेंस कर देते हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद जी को भोजन सर्व हो रहा था तो यमुना माता जी किचन में बना रही थी और एक भक्त जो है वो प्रभुपाद जी को गरम गरम गोल गोल चपाती दे के आ रहे थे, सर्व कर रहे थे। तो जब भी वो भक्त चपाती लेके प्रभुपाद जी के कमरे में आते थे तो पहले नमस्कार करते थे और फिर चपाती देते थे, और जितनी बार वो चपाती लेके आते थे उतनी बार ही नमस्कार फिर चपाती दी और फिर नमस्कार किया फिर गए, और फिर चपाती लेके आए फिर नमस्कार किया फिर चपाती दी फिर नमस्कार किया फिर वापस गए। तो किसी ने कहा कि प्रभुपाद जी क्या इतना सब बार बार नमस्कार करने की जरूरत थी क्या, किसी ने पूछ लिया जैसे कि ये कर रहे हैं। तो प्रभा जी यस दिस इज गुड, ये बहुत अच्छी चीज है। गुरु महाराज को, सन्यासी को, गुरु को जितनी बार भी नमस्कार करें कम है, जितनी बार भी करें, जब भी मिले, अभी इस कमरे से बाहर गए लौट के आए फिर नमस्कार, दोबारा कहीं मिले फिर नमस्कार, ऐसा नहीं कि महाराज एक बार तो मिल चुके नमस्कार हो चुका बार बार क्या, ऐसा नहीं है। जितनी बार जहां भी जैसे भी जिस भी हाल में मिलेंगे उतनी ही बार आपको उतनी ही हमको नमस्कार करना है, क्योंकि उतनी ही बार हमको भगवान की कृपा मिलेगी। तो ये कुछ सिद्धांत जो भक्तों के संग में बहुत आसान लगते हैं, बहुत सहज लगते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में ये कि सकाम कर्मों के द्वारा, ये भी नहीं कहा कर्मों के द्वारा, सकाम कर्मों के द्वारा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की, जो कंपीटिंग विद द लॉर्ड, लॉर्डिंग द नेचर, मतलब हम लोग चाहते हैं कि जैसे ईश्वर भगवान ईश्वर है, परमेश्वर है, हम भी ईश्वर है भगवान से कम, ऐसी मैटर पावर से ये चीज बहुत जल्दी आ जाती है। जैसे अभी किसी को कहते हैं कि भाई आप इस शहर के इंचार्ज हैं, तो कितना गरूर, कितनी पावर, ब्रह्मा जी, मतलब ब्रह्मा जी हैं तो वो जो चाहे ऐसे सब सबके विधाता हैं, और आए तो उन्होंने कहा ये भगवान कृष्णा है, ये बच्चों की तरह खेल रहे हैं, ये सब क्या है, उन्हें छिपा दिया जाए टेस्ट करने के लिए, बच्चों को सब गोप गोपाल को छिपा दिया ब्रह्मा, और वो एक सेकंड के अपने टाइम के हिसाब से गए, और मृत्यु लोक का वो एक साल था, तो वो भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड किया गोप ग्वालों में और गाय बछड़ों में, और किसी को कुछ पता नहीं चला। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विमोहन, उनको मोह हुआ, ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण ने उनके मोह को भंग किया। ऐसे इंद्र को मोह हुआ कि भाई ये कौन बच्चा है जो मना कर रहा मेरी पूजा को, हर साल मेरी पूजा होती है जाके रुकवा दी। तो ये चीजें जो है बार बार जो होती हैं, जब इंद्र और ब्रह्मा जैसे लोग, शिव जैसे लोग, इन लोगों को भ्रम हो जाता है तो हम लोग क्या हैं। इसलिए ही भक्तों का संग और बराबर भक्ति हम लोगों को करनी है। शेष महेश गणेश दिनेश, जाही की महिमा निरंतर गावे, ताहे अहीर की छोहरिया छचिया बरी छाछ पे नाच नाच। ये जो सारे लोग शेष नाग अनंत शेष, शेष महेश गणेश दिनेश, ये लगातार उनकी स्तुति में उत्तम श्लोक है, जो श्लोक में भी आया कि जो बेस्ट, जो सबसे बढ़िया तरीके से अलंकृत भाषा में अलंकृत श्लोकों की रचना कर कर के भगवान की स्तुति में लगातार लगे हुए हैं वो लोग, और ताए अहीर की छोहरिया, कि गांव में जो व्रज में जो ग्वालन है वो कहती काना तुझे माखन चाहिए कि हाँ चाहिए, छाछ चाहिए कि हाँ चाहिए, तो जरा नाच के तो दिखा, और काना नाच रहे वेट कर रहे हैं कि नाच के जब गया नाच ले ठीक है लाओ छाछ ले लो। ये भगवान है, ये पर्सनलिटी ऑफ गॉड है कि एक छाछ के छोटे से गिलास के लिए डांस करके दिखा रहे हैं। क्या भगवान की ये लीलाएं हैं, इन लीलाओं का क्या वर्णन है, क्या हमारे संतों ने, हमारे जो गुरु की परंपरा में क्या इन लोगों ने बताया सभी डिटेल किस तरह। तो मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा। अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई किसी का कोई कमेंट, या मैंने कोई ऐसी बात कही हो जो बहुत क्लियर ना हो। हरे कृष्ण।